एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
तो आज हम एक ऐसी किताब और कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो दोस्ती, उम्मीदों के बोझ और एक बहुत ही भयानक त्रासदी को बयां करती है।
हाँ, जोनाथन रोजन की किताब है द बेस्ट माइंड्स। ये कहानी है उनकी और उनके बचपन के दोस्त माइकल लॉडर की।
और ये सिर्फ एक संस्मरण नहीं है जैसा आपने पहले इशारा किया था।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें आपको व्यक्तिगत कहानी मिलेगी, समाज पर एक तरह की टिप्पणी भी है, और हाँ, मानसिक स्वास्थ्य के इतिहास का भी कुछ हिस्सा है। रोजन अपने सबसे करीबी दोस्त माइकल की कहानी बता रहे हैं। एक ऐसा दोस्त जिसकी जिंदगी में मतलब अविश्वसनीय क्षमता थी, पर उतनी ही गहरी त्रासदी भी।
माइकल लॉडर, हाँ, एक नाम जो कभी बहुत प्रतिभाशाली माना जाता था। ये लॉ स्कूल से ग्रेजुएट और मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई का चेहरा भी।
बिल्कुल, पर वो खुद सिज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे थे, एक गंभीर मानसिक बीमारी। और जोनाथन रोजन जो लेखक हैं, वो उनके बचपन के साथी थे जो ये कहानी हम तक ला रहे हैं।
दोनों की परवरिश भी एक जैसी ही थी, है ना? न्यूयॉर्क के न्यूरोशेल में अकादमिक परिवार।
हाँ, माहौल काफी बौद्धिक था। परिवारों में पढ़ाई लिखाई का माहौल, बुद्धि को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन देखिए, जिंदगी के रास्ते कितने अलग हो गए। एक सफल लेखक बन गए और दूसरे की कहानी, उसका अंत हिंसा और दुख में हुआ।
और यही यही सवाल शायद इस पूरी कहानी के दिल में है। क्यों? कि कैसे अपनी पीढ़ी का सबसे काबिल, सबसे होनहार दिमाग, जिसे ये माना गया कि उसने अपनी मानसिक बीमारी पर जीत हासिल कर ली है, वो आखिरकार एक हिंसा का अपराधी बन गया।
हाँ, ये सवाल परेशान करता है। और ये कहानी दोस्ती, अपराध बोध, सहानुभूति की सीमाएं, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। और वो कड़वी सच्चाई भी सामने लाती है कि कभी कभी सिर्फ प्यार और अच्छे इरादे काफी नहीं होते।
और आपने सिस्टम की बात भी की थी, अमेरिका की मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था की कमियां।
हाँ, उस पर भी ये रोशनी डालती है। सवाल तो उठता है कि इतने साधन, इतना विशेषाधिकार होते हुए भी एक व्यक्ति के साथ ऐसा भयानक अंत कैसे हो सकता है? कुछ तो कमी रही होगी ना सिस्टम में।
चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 70 का दशक, न्यू रोशेल, न्यूयॉर्क। दो बच्चे, पड़ोसी जोनाथन और माइकल, बहुत गहरे दोस्त बन गए।
हाँ, और जैसा कहा, माहौल बौद्धिक था, परिवार पढ़े लिखे, बुद्धि को ही सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था। उनकी दोस्ती में भी ये दिखता था, घंटों बातें करना, किताबें पढ़ना, एक दूसरे को दिमागी तौर पर चैलेंज करना।
और माइकल की प्रतिभा, वो तो कुछ खास ही थी, है ना? बचपन से
असाधारण, बिल्कुल। बहुत कम उम्र में ही बहुत जटिल भाषा में बात करना, उनका ज्ञान बहुत गहरा था, बहुत फैला हुआ। रोजन खुद भी प्रतिभाशाली थे, पर वो लिखते हैं कि वो अक्सर माइकल की छाया में महसूस करते थे, जैसे वो चांद हो और माइकल सूरज।
तो उनके अंदर ये विश्वास बहुत गहरा बैठ गया था कि दिमाग ही सब कुछ है।
हाँ, जिसे हम शायद बौद्धिक निरपेक्षता कह सकते हैं, मतलब एक अटूट यकीन कि दिमाग की ताकत, तर्क, बुद्धि, ये किसी भी भावना पर, किसी भी समस्या पर, यहाँ तक कि शायद किसी बीमारी पर भी हावी हो सकते हैं। ये सोच उनकी दोस्ती का आधार थी, पर अफसोस, बाद में यही सोच त्रासदी का एक हिस्सा भी बनी।
फिर दोनों येल यूनिवर्सिटी गए। कॉलेज में भी माइकल का प्रदर्शन शानदार रहा, पर क्या यहीं से कुछ कुछ बदलाव दिखने लगे थे?
हाँ, बहुत हल्के, कुछ अजीब सा व्यवहार, कभी कभी जरूरत से ज्यादा जोश या जुनून, पर उस समय शायद उसे उनकी प्रतिभा का ही एक हिस्सा मान लिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। होता है ना, ऐसे माहौल में जहाँ कंपटीशन बहुत हो, ऐसी तेजी को शायद चेतावनी की तरह नहीं देखा जाता।
असल मुश्किल तो कॉलेज के बाद आई, वो कॉर्पोरेट नौकरी का दबाव शायद झेल नहीं पाए।
हाँ, और तब उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। पहला गंभीर साइकोटिक ब्रेक, मतलब वो पल जब इंसान का असलियत से संपर्क टूट जाता है।
और तब पता चला कि उन्हें सिज़ोफ्रेनिया है।
गंभीर सिज़ोफ्रेनिया, ये एक बहुत जटिल मानसिक स्थिति है, आप जानते हैं, जिसमें सोच, भावनाएं, वास्तविकता को समझने की क्षमता सब प्रभावित होती है। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, और ये उनके लिए एक पहचान का संकट था। सोचिए, जिसकी पूरी पहचान उसकी बुद्धि पर टिकी हो, और अब वही भरोसे के लायक न रहे। कई साल उन्होंने अस्पतालों और संस्थानों में बिताए।
और फिर वो हुआ जो लगभग अविश्वसनीय लगता है, इतने सालों के संघर्ष के बाद माइकल ने येल लॉ स्कूल में अप्लाई किया, दुनिया के टॉप लॉ स्कूलों में से एक,
और उन्हें एडमिशन मिल भी गया। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था, पर शायद यहीं से एक खतरनाक मोड़ भी शुरू हुआ। उन्होंने अपनी बीमारी को छुपाया नहीं, बल्कि उसे ऐसे पेश किया जैसे ये उन्हें एक खास नजरिया देती है।
और यहीं से वो कहानी बननी शुरू हुई कि एक इंसान ने पागलपन को हरा दिया।
बिल्कुल, वो कहानी समाज को बहुत पसंद आई। येल में वो कामयाब भी रहे, अपनी बीमारी पर खुलकर बात भी करते थे, और फिर 1995 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने,
हाँ, वो पहले पन्ने वाली कहानी, ए वॉयज टू बेडलम एंड पार्ट वे बैक,
हाँ, उससे वो रातों रात देश भर में मशहूर हो गए। मानसिक रूप से बीमार लोगों और उनके परिवारों के लिए वो एक उम्मीद की किरण बन गए, एक प्रेरणा।
कहानी इतनी जबरदस्त थी कि हॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा।
रॉन हॉवर्ड की कंपनी इमेजिन एंटरटेनमेंट ने कहानी के राइट्स खरीद लिए करीब $15 लाख में। ब्रैड पिट का नाम भी जुड़ा कि वो उनका रोल करेंगे। तो अब माइकल सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक ब्रांड बन गए थे, एक प्रतीक।
लेकिन उनके दोस्त जोनाथन रोजन को चिंता होने लगी थी, क्यों?
उन्हें लग रहा था कि माइकल अब सिर्फ एक रोल निभा रहे हैं, ठीक हो चुके प्रतिभाशाली का रोल, लेकिन वो अपनी बीमारी की असलियत को, मतलब दवा के साइड इफेक्ट्स, बीमारी के दोबारा लौटने का खतरा, इन सबको नजरअंदाज कर रहे थे।
वो अपनी ही कहानी में फंस गए थे।
बिल्कुल, उन पर लगातार एक प्रेरणा बने रहने का भारी दबाव था। ये एक मिथक था जिसे समाज सुनना चाहता था, मीडिया बेचना चाहता था, और शायद शायद माइकल खुद भी इस पर यकीन करना चाहते थे।
होता है ना, हमें अच्छी लगती हैं ऐसी कहानियां जहां कोई अकेले ही मुश्किलों पर जीत पा लेता है।
और फिर कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है।
हाँ, वो मूवी डील का दबाव, अपनी बायोग्राफी लिखने का प्रेशर, अपनी पब्लिक इमेज बनाए रखने का संघर्ष, ये सब बढ़ता गया। और अपनी दिमागी तेजी बनाए रखने के चक्कर में उन्होंने अपनी दवा की डोज कम करनी शुरू कर दी,
जिसका नतीजा भयानक हुआ।
पैरानोया लौट आया, वो वहम, वो शक, उन्हें लगने लगा कि नाजी उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उनकी मंगेतर थीं कैरोलिन कैरी कॉस्टेलो, वो खुद विकलांगों के अधिकारों के लिए काम करती थीं और माइकल की जीत की कहानी में बहुत विश्वास रखती थीं। उनके साथ थी इस मुश्किल वक्त में भी।
लेकिन June 1998 में एक भयानक पैरानॉइड भ्रम की हालत में माइकल ने अपनी गर्भवती मंगेतर कैरी की चाकू मारकर हत्या कर दी। एक पल में सब बदल गया, नायक से खलनायक।
उन्हें गिरफ्तार किया गया, पर मुकदमे के लिए मानसिक रूप से अयोग्य पाया गया।
हाँ, उन्हें फिर सबसे ज्यादा सुरक्षा वाले एक मनोरोग अस्पताल भेज दिया गया। वहीं उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी बिताई और 2021 में उन्होंने आत्महत्या कर ली।
और उनके दोस्त रोजन के लिए तो ये दशकों का अपराध बोध और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया होगा।
बिल्कुल, ये किताब लिखना शायद उनके लिए एक तरह का प्रायश्चित है, और उस मिथक को तोड़ने की कोशिश भी जिसने अनजाने में ही सही इस हिंसा में भूमिका निभाई।
तो माइकल की विरासत क्या रही? एक टूटी हुई क्षमता की कहानी?
हाँ, एक तरह से एक ऐसी क्षमता जो पूरी तरह खिल नहीं पाई। एक समय था जब वो कानून और विकलांगता अधिकारों के क्षेत्र में बहुत बड़ी आवाज बन सकते थे, लेकिन आखिरकार उन्हें शायद एक केस स्टडी की तरह याद किया जाएगा कि जब गंभीर मानसिक बीमारी का सही इलाज न हो और जब इंसान एक झूठी कहानी के बोझ तले दब जाए तो कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं।
ये समझने के लिए कि कैसे क्षमता और त्रासदी एक साथ जुड़ गईं, शायद हमें उनकी और उनके आसपास के लोगों की सोच, उनके मूल्यों को और गहराई से देखना होगा।
बिल्कुल, जैसे हमने पहले वो बौद्धिक निरपेक्षता की बात की थी कि मन सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, ये उनके बचपन का दर्शन था। लेकिन माइकल ने जो सार्वजनिक दर्शन अपनाया, खासकर मशहूर होने के बाद, वो एक तरह का परफॉर्मेंस ज्यादा था।
मतलब ये दिखाना कि मानसिक बीमारी को दिमागी ताकत से हराया जा सकता है।
हाँ, और समाज को ये बहुत पसंद आया। लोग ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं, लेकिन रोजन यही दिखाते हैं कि ये खतरनाक झूठ था, खासकर शिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारियों के मामले में। ये असलियत को छुपाता है।
इन सब के पीछे अलग अलग लोगों की प्रेरणाएं क्या थी? माइकल की क्या जरूरत थी ये सब करने की?
माइकल के लिए शायद कई बातें थीं। एक तो अपनी पहचान, अपनी बुद्धि को वापस पाने की गहरी जरूरत। सिज़ोफ्रेनिया ने उनसे वो छीन लिया था। ये लॉ स्कूल और फिर प्रसिद्धि, शायद ही उसे वापस पाने का एक रास्ता लगा हो। और फिर तारीफ और शोहरत की चाहत भी होती है, जो उनके इस नाजुक कहानी को सहारा देती थी।
और जोनाथन की, उनकी क्या प्रेरणा थी ये सब लिखने की?
दोस्ती, वफादारी और गहरा अपराध बोध। उन्हें ये समझना था कि ये सब हुआ कैसे, और शायद उस मिथक को तोड़ने की इच्छा भी, जिसे बनाने में वो मानते हैं अनजाने में उनका भी हाथ था।
और समाज, मीडिया, हॉलीवुड, उनकी भी तो भूमिका रही।
हाँ, बहुत बड़ी। समाज को एक अच्छी कहानी चाहिए थी, प्रेरणा देने वाली, जो बिक सके, जो पहले से बनी बनाई सोच में फिट हो जाए। माइकल की जीत की कहानी इस खांचे में एकदम सही बैठी, पर इस चक्कर में गंभीर मानसिक बीमारी की जो जटिल और अक्सर असुविधाजनक सच्चाई है, वो नजरअंदाज हो गई।
तो एक तरफ था बीमारी पर विजय पाने का नजरिया जो माइकल ने अपनाया, और दूसरी तरफ रोजन का नजरिया है जो वो किताब के जरिए पेश करते हैं।
हाँ, रोजन जोर देते हैं बीमारी के प्रबंधन पर, उसे स्वीकार करने पर और सामुदायिक सहारे पर। वो कहते हैं कि सिज़ोफ्रेनिया जैसी स्थायी बीमारी एक स्थिति है जिसके साथ जीना सीखना होता है। ये कोई दुश्मन नहीं जिसे एक बार में हरा दिया जाए। उनकी किताब असल में उन प्रेरणादायक कहानियों के, क्या कहते हैं, अत्याचार के खिलाफ है, क्योंकि ये कहानियां अक्सर असलियत छुपाती हैं। ये दिमाग की कहानी से ज्यादा शरीर की, मतलब मस्तिष्क की कहानी थी।
और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें व्यवस्था की भी कमियां थी।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये अमेरिका में डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की विफलता को भी दिखाती है। मतलब जब मानसिक अस्पतालों को बंद तो कर दिया गया, पर समुदाय में उन मरीजों की देखभाल के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हुए, तो माइकल जैसे लोगों के लिए लगातार मदद मिलना मुश्किल हो गया। यहां तक कि उनका जो विशेषाधिकार था, अच्छी शिक्षा, साधन, शायद उसने भी उनकी असल जरूरत को छुपा दिया।
ये पूरी कहानी हमें इंसानी जिंदगी और समाज के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। सबसे बड़े सबक क्या निकलते हैं इससे आपके हिसाब से?
शायद सबसे पहला सबक है सरल सीधी कहानियों के खतरे। हम अक्सर मुश्किल इंसानी हकीकतों को आसान प्रेरणा देने वाली कहानियों में फिट करना चाहते हैं, पर असलियत कहीं ज्यादा उलझी हुई होती है, बिखरी हुई। माइकल की कहानी दिखाती है कि ये सरलीकरण कितना खतरनाक हो सकता है।
और ये भी कि सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं होते।
हाँ बिल्कुल, हमदर्दी, मदद, ये सब जरूरी है, लेकिन ये असलियत पर आधारित होनी चाहिए, सिर्फ हमारी इच्छाओं पर नहीं। सच्ची हमदर्दी का मतलब कभी कभी मुश्किल सच का सामना करना भी होता है, चाहे वो कितना भी असहज क्यों न लगे। रोजन की पूरी किताब इसी कश्मकश को दिखाती है, दोस्ती निभाना और सच बोलना, इसके बीच का द्वंद्व।
बुद्धि बनाम जीव विज्ञान की बहस भी बहुत अहम है यहाँ।
हाँ, ये कहानी हमें विनम्रता सिखाती है। गंभीर मानसिक बीमारी सिर्फ दिमागी ताकत से जीतने वाली लड़ाई नहीं है, ये अक्सर एक जैविक स्थिति होती है। इसे लगातार देखभाल, दवा और यथार्थवादी सहारे की जरूरत होती है। जैसा रोजन कहते हैं, ये मन की कहानी नहीं, मस्तिष्क की कहानी थी।
दोस्ती के रिश्ते पर भी ये कहानी कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है ना?
सही बात है, सच्ची दोस्ती सिर्फ कामयाबियों का जश्न मनाना नहीं है। इसमें ये हिम्मत भी होनी चाहिए कि हम दोस्त की चिंता जता सकें, उसके खुद के बनाए भ्रम को चुनौती दे सकें, उसकी असलियत से जुड़ सकें, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। रोजन इसी अपराध बोध से जूझते हैं कि क्या वो और कुछ कर सकते थे, क्या उन्हें और ज्यादा दखल देना चाहिए था।
और आखिर में रोजन का ये फैसला कि वो इस मुश्किल कहानी को ईमानदारी से लिखेंगे।
हाँ, ये अपने आप में एक नैतिक साहस का काम है। तमाम दर्दनाक सच्चाइयों के बावजूद माइकल की कहानी को उसकी पूरी जटिलता में बताना, उन मिथकों को तोड़ना जिन्होंने शायद त्रासदी में भूमिका निभाई, ये एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी निभाना है, मुश्किल सच का गवाह बनना।
इस गहरी और दुखद कहानी से हम कौन से आखिरी सबक ले सकते हैं? कोई एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि?
भावनात्मक स्तर पर शायद सबसे चुभने वाली बात यह है कि कभी कभी हमारा गहरा प्यार और नेक इरादे भी अनजाने में उस पिंजरे को बनाने में मदद कर सकते हैं जिसमें हम जिसे बचाना चाहते हैं वो फंस जाता है। ये मानना कि प्यार अकेले किसी को गंभीर मानसिक बीमारी से नहीं बचा सकता, और इस सीमा को स्वीकार करना, ये अपने आप में समझदारी और करुणा का एक गहरा रूप है शायद।
और कोई बौद्धिक या वैचारिक अंतर्दृष्टि?
वैचारिक रूप से ये कहानी दिखाती है कि कैसे मुश्किलों से उभरने की व्यक्तिगत कहानियां, चाहे वो कितनी भी प्रेरणादायक लगें, वो समाज को बड़ी सामाजिक समस्याओं के लिए सही व्यवस्थागत समाधान ढूंढने से रोक सकती हैं। समाज की जो भूख है प्रेरणादायक कहानियों के लिए, वो गंभीर मानसिक बीमारी की जैविक सच्चाई पर पर्दा डाल सकती है। फिर वही बात, हम सब मन के बारे में कहानी पर विश्वास करना चाहते थे, पर ये मस्तिष्क के बारे में कहानी थी।
और अंत में कोई ऐसा सबक जो हम सब पर लागू होता हो, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि?
हम सब जीने के लिए अपने बारे में कहानियां गढ़ते हैं, ये जरूरी भी है शायद। लेकिन ये कहानी एक जोरदार चेतावनी है कि तब क्या होता है जब वो कहानी एक ऐसा मिथक बन जाती है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक ऐसा किरदार जिसे आपको निभाना ही पड़ता है, चाहे आपकी असलियत कुछ भी हो। शायद सबसे ज्यादा आज़ादी इसी में है कि हम अपने जीवन की एक परफेक्ट कहानी बताने की इच्छा छोड़ दें और हम असल में जो हैं, अपनी तमाम उलझनों, कमियों और ईमानदारी के साथ उस सच्चाई को अपना लें, भले ही वो कहानी उतनी अच्छी ना लगे।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।